الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम सूरह मायदा की तफसीर पढ़ा करते हैं मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 3 से। पिछले हफ्ते हमारी क्लास नहीं हो सकी थी सफर की वजह से, तो हमने उससे पिछले हफ्ते ये आयत नंबर 32 का आधा हिस्सा पढ़ लिया था, उसका तर्जुमा यानी हमने पढ़ लिया था। मिन अजले दालिक, इसी सबब से, इसी वजह से, मिन अजले दालिक कतबना अला बनी इसराइला, हमने लिख दिया बनी इसराइल के ऊपर यानी हमने बनी इसराइल पर फर्ज कर दी ये बात, अन्नहु मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन, के बेशक जिसने जिसने कत्ल किया एक जान को बगैर किसी दूसरी जान के मुआवजे के, ठीक है, यानी जिसको के कत्ल के बदले में जो हद की सजा जारी की जाती है तो उसके बदले, उसके बगैर, बस ऐसे ही बगैर किसी शरी वजह के कत्ल कर दिया। औ फसादिन फिल अर्दे, या जमीन के अंदर फसाद मचाया, फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, तो ऐसे ही है गोया के उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा, और जिसने जिंदगी बख्शी किसी एक जान को, ठीक है, क्या मतलब जिंदगी बख्शी, अल्लाह ताला की तरह से जिंदगी बख्शना नहीं बल्कि उसको कत्ल होने से बचा लिया, ठीक है, तो वमन अहयाहा, जिंदा रखा या कत्ल होने से बचा लिया किसी एक जान को, हा की जमीर जो है वो पॉइंट कर रही है नफ्स की तरफ, ठीक है, तो चूंकि नफ्स का जो लफ्ज है ये मुअन्नस आता है अरबी जुबान के अंदर, तो इसके लिए जो प्रोनाउन जमीर इस्तेमाल होती है तो वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होती है, ठीक है, तो अहया आ आ की जमीर, फकअन्नमा, बस ये ऐसा ही है, कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि उसने पूरी इंसानियत को जिंदगी बख्शी। वलकद जाअतहुम, और तहकीक के जाअतहुम रसूलुना, हमारे रसूल आए इनके पास बिल बय्यिनात, खुली हुई निशानियों के साथ, खुली हुई निशानियों के साथ हमारे रसूल इनके पास आ चुके, ठीक है, थुम्मा इन कथीरम मिनहुम, फिर भी इसके बाद हुआ क्या कि बेशक इनमें से अक्सरियत जो है बाद दालिका, इसके बाद, ठीक है, यानी इसके बाद क्या हुआ, बाद दालिका, इसके बाद क्या हुआ कि रसूल तो आ गए खुली निशानियां लेकर के, जिनको डिनाई करना इनके बस में ही नहीं था, लेकिन हुआ ये कि इनमें से अक्सर जो है ना, फिल अर्दी लमुसरिफून, जमीन के अंदर हद से गुजर जाने वाले, इसराफ करने वाले, जिसका कि एक तर्जुमा फजूल खर्ची भी बनता है, उर्दू जुबान के अंदर इसराफ को फजूल खर्ची भी कहा जाता है ना। बड़ी लंबी बात हो चुकी है पिछले दिनों फजूल खर्ची के ऊपर, क्या होती है फजूल खर्ची, ठीक है। तो यहाँ पर इसराफ का जो लफ्ज है वो चूंकि खर्चा और माल पैसे के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इस वजह से यहाँ पर नमुसरिफून जो है वो हद से गुजर जाने वाले, ठीक है। तो यानी जो एतदाल का रास्ता था उससे आगे बढ़ जाने वाले। तो रसूलों के बयिनात लाने का काम तो पूरा पूरा हुआ, उन्होंने तो इसमें कोई कमी नहीं करी, लेकिन मानने वाले, ठीक है, मानने वाले जो है ना वो कम ही हुए, ज्यादा अक्सरियत ना मानने वालों की हुई, ठीक है। तो रसूलों ने क्या काम किया, रसूलों ने बात ऐसी समझा दी इनको कि समझ में आ गई इनके बात, ठीक है, समझ में आ गई इनके बात। लेकिन समझ में आ जाना एक दर्जा होता है और मान लेना, उससे एग्री कर लेना, ये दूसरा दर्जा होता है। तो अगर पहला दर्जा किसी को नसीब हो भी गया तो जरूरी नहीं है कि उसको दूसरा दर्जा भी नसीब हो जाए, ठीक है। तो हमें तो पहले दर्जे की वैसे आजकल पड़ी हुई है कि भी पता नहीं समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो समझाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन दूसरा दर्जा तो फिर अल्लाह की तौफीक जिसको कहते हैं, या हिदायत जिसको कहते हैं, कि भाई मान ले, यानी ईमान लाने वालों में से हो जाए, एतमाद करने वालों में से हो जाए, ये फिर बहुत कम। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लल्लज़ीन आमनू सालिहात, ठीक है। तो खसारे में सारी की सारी इंसानियत है, फिर उनमें से चंद लोगों को एग्जेम्प्ट किया, वो कौन लोग हैं, आमनू, जिन्होंने तस्लीम भी कर लिया हिदायत की बात को, ठीक है, सरे तस्लीम खम भी कर दिया उसके सामने, तो वो फिर बच गए, ठीक है। तो इसी वजह से अक्सरियत के बारे में अभी जुमे के दर्स के अंदर भी बात हुई थी, सूरह अनआम के अंदर भी यही बात चल रही है कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वह इन तो अक्सर मन फिल अर्थ, कि अगर आप जमीन की अक्सरियत की अतात करेंगे ना, युज़िल्लु कान सबील अल्लाह, तो वो आप जैसे इंसान को भी, जो कि मेरे महबूब हैं, बेहतरीन अखलाक वाले हैं, बेहतरीन सलाहियतों वाले हैं, बेहतरीन इस्तेदाद वाले हैं, लेकिन अगर आपने ये गलती करी कि उनकी अक्सरियत की अतात शुरू कर दी, ठीक है, तो वो आपको भी गुमराह करने, आपको भी सीधे रास्ते पे नहीं रहने देंगे। तो जाहिर नबी अलैहिस्सलाम ने तो ऐसा करना ही नहीं था, क्योंकि अल्लाह के नबी तो वैसे ही मासूम होते हैं, खता उनसे हो ही नहीं सकती, लेकिन उम्मत को पैगाम दिया कि तुमने बच्चों कितने ही नेक हो जाओ, तुम कितने ही जो है वो तहज्जुद गुजार हो जाओ, और कितने ही जो है वो हज उमरे करने वाले हो जाओ, कितने ही जो है वो सदका खैरात करने वाले हो जाओ, लेकिन अतात तुमने अगर जमीन में अक्सरियत की करनी शुरू कर दी ना, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे सीधे रास्ते के ऊपर, तुम्हें वहां से हटा करके ही छोड़ेंगे, तो तुम फिर अपने अपने आप को नहीं बचा सकोगे, ठीक है। देखो मैंने तो अपने हबीब के बारे में कह दिया, उनको कह दिया कि आप भी नहीं बचेंगे, तो तुम कैसे बचोगे फिर, ठीक है। और उसकी रीजन आगे बता दी ना, ये तबियन अलदादन, क्योंकि ये जो अक्सरियत है ना जमीन पर रहने वालों की, तो ये तो बस अटकल पिचू, अपने गुमान और अपने अजम्पशंस को जो है वो फॉलो करते हैं, और वह इनहुम इल्ला यखलुसून, और ये जो है वो झूठ गढ़ने वाले और जो है ना वो तुक्के मारने वाले यही है बस, ठीक है। हकीकत में इनके पास तो इन है ही नहीं। तो वही जो है वो सूरह मायदा के अंदर भी फरमाया कर, थुम्मा इन्न कसीरम मिन्हुम बादा ज़ालिका फिल अर्दि लमुसरिफून, तो जमीन के अंदर जो अक्सरियत होती है ना वो तो फिर हद से गुजर जाने वालों की ही होती है, ठीक है। तो ये हो गए इन आयात का तर्जुमा मुकम्मल, ठीक है। अब किसी को सवाल हो तर्जुमे के बारे में कोई, तो आप 4 मिनटों पर लेके पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद खुलासा तफसीर जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बयान और कुरान से हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे नकल फरमाते हैं, तो वो हम शुरू करते हैं। तो इसमें भी तर्जुमा भी होता है अंडरलाइंड, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर खुलासा तफसीर भी, यानी मुख्तसर तफसीर भी होती है। तो फरमाया कि और, यानी दुआओं का तर्जुमा, और उतरू अलैहिम नबा अबनई आदम बिल हक, ठीक है, तो अब किसको उतलू का हुक्म दे रहे हैं? तफसीर यानी सियाक व सबाक से पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला उतलू का हुक्म दे रहे हैं, यानी तिलावत कीजिए। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अहले किताब को किसके सामने तिलावत कीजिए? कॉन्टेक्स्ट, पीछे जिन आयात में बात हो रही है बनी इसराइल की, तो यहां पर भी उन्हीं बनी इसराइल को ही बताने की बात हो रही है। ठीक है, कि इन अहले किताब को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का यानी हाबील और काबील का किस्सा सही तौर पर पढ़कर सुनाइए। ठीक है, यानी तिलावत करने का हुक्म है ना, तो तिलावत जो है वो तो कोई पीछे से जो चीज मिलती है ना उसी को आगे पढ़ के सुना देना, इसको तिलावत करना कहते हैं। तो उतलू, ठीक है, तो ये अपनी तरफ से यानी अपने जहन के ख्यालात को आगे बयान करना नहीं, बल्कि पीछे से जो आपको बताया गया ना वही पढ़ करके इनको सुना दीजिए। ठीक है, और बिलहक का जो है वो आगे तफसीर में काफी अच्छी हजरत ने लिखी है, तो वो वहां पे पढ़ लेंगे। यहाँ पर बस इतना सुन लीजिए कि सही तौर पर पढ़कर सुनाइए। ठीक है, ताकि अब ये तफसीरन हजरत थानवी रहमतुल्लाह लिख रहे हैं कि क्यों सुनाइए, उसकी वजह ताकि उनको इंतिसाब बिस्सालिहीन का घुमंड जाता रहे, इंतिसाब बिस्सालिहीन का घुमंड। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे ही आयत नंबर 18 सूरह मायदा के अंदर बनी इसराइल के बारे में हमने पढ़ी थी कि उसके अंदर ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बनी इसराइल क्या क्या करते थे, कि ये कहते थे कि नहनु अबनाउल्लाही। ठीक है, अपने बारे में इतना खुशगुमानी का शिकार थे कि कहते थे हम तो अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह के बेटे का मतलब इनकी ये मुराद नहीं होती थी कि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा ईसाई कहते हैं, तो उस तरह से हमें भी नऊज़ बिल्ला अल्लाह ताला ने जना है, नहीं, बल्कि अल्लाह के बेटे का मतलब इनका भी क्या होता था कि हम तो अल्लाह वालों के बेटे हैं। ठीक है, अल्लाह वालों के बेटे हैं, क्योंकि हमारे खानदान के अंदर तो अल्लाह के नबी बकसरत आए, हजारों की तादाद में आए। ठीक है, तो चूंकि हम अल्लाह वालों के बेटे हैं, बस खलास, अब हमें खुद नेक बनने की जरूरत ही नहीं, हम खुद जो चाहें करें, हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हमें तो जहन्नुम की आग जो है वो थोड़ी देर के लिए छुएगी भी, तो थोड़ी देर के लिए बस, उससे ज्यादा नहीं छुएगी। ठीक है, तो ये कौन आ गया भाई, मुश्ताक अहमद इज नोट टेकर। ठीक है जी, उर्दू को सब्सक्राइब करवा के देखें इनसे, एआई साहब से। एनीवेज, तो रिकॉर्ड तो हो रहा होता है। अच्छा, तो हजरत ने भी यही लिखा कि इनको जो घुमंड था ना, तो ये घुमंड उनका खत्म हो जाए, जिसका नहनु अबना उल्लाही में इजहार हो रहा है, यानी आयत नंबर 18 में उसका इजहार हो रहा है, उनके घुमंड का, उनके गुरूर का। और वो किस्सा उस वक्त हुआ था, यानी हाबिल और काबिल का किस्सा जो पढ़ के सुनाएंगे, तो वो उस वक्त हुआ था जबकि दोनों ने अल्लाह ताला के नाम की एक एक न्याज पेश की, एक एक कुर्बानी पेश की, और उनमें से एक की यानी हाबिल की तो कबूल मकबूल हो गई और दूसरे की यानी काबिल की मकबूल ना हो। ठीक है, तो अब हाबिल काबिल के किस्से का ताल्लुक बनी इसराइल के घुमंड के साथ कैसे? वो ऐसे कि भाई हाबिल और काबिल तो अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम के सगे बेटे थे, लेकिन उनमें से भी जो मुत्तकी था वो कामयाब हुआ और जो गैर मुत्तकी था वो नाकाम हो गया। तो सगा बेटा, अल्लाह के पहले नबी, पहले इंसान का सगा बेटा होना उसके काम नहीं आया। तो तुम्हारा जो है वो अंबिया के खानदान में पैदा हो जाना कैसे तुम्हें काम आएगा? ठीक है, तो ये घमंड जो है ना तुम अपना साइड पे रखो, इसको छोड़ दो तुम अपने इस घमंड को। ठीक है, तो नेकों के जो औलाद होती है ना, तो वो अगर खुद नेक बन जाए, यानी जैसे माँ बाप थे वैसी नेक बन जाए, या कुछ कम भी नेक बन जाए, लेकिन नेक तो बने ना कम से कम, मुत्तकी किसी दर्जे की मुत्तकी तो बने ना, तकवा के तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं ना। तो हमने अपने मशायख से सुना दीजिए, सही सुना कि किसी को जो है वो हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने इंतकाल के बाद ख्वाब में नजर आए, तो वो भी कोई अल्लाह का बंदा था, उसको फिक्र भी थी कि भी मरने के बाद क्या होगा। तो ऐसे लोग जब किसी अल्लाह के वली को ख्वाब में देखते हैं ना, तो वो फौरन सवाल करते हैं कि आपका क्या बना मौत के बाद, तो इसने भी वही सवाल किया कि आपका मौत के बाद क्या बना। तो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, ख्वाब आप में आपकी बात है, वो कोई शरी हुज्जत तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात शरीयत के खिलाफ ना हो तो उसको नकल करने में भी हर्ज नहीं है। तनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि इल्म में तो अल्लाह ताला ने हमें हजरत शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह वाला मुकाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत बड़े आलिम थे, और अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को भी अल्लाह ताला ने इल्म में बहुत बड़ा मुकाम अता फरमाया था। तो फरमाया कि इल्म में तो हजरत तो अल्लाह ताला ने हमें वही मुकाम दे दिया जो जो हजरत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह को दिया था, लेकिन हजरत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बारीक तकवा इख्तियार किया था और हमने तो मोटा मोटा तकवा इख्तियार किया था, ठीक है। तो बारीक तकवा क्या होता है और मोटा मोटा तकवा क्या होता है? तकवा तो दोनों होते हैं, लेकिन बारीक तकवा का मतलब बहुत ज्यादा एहतियात करना, ठीक है, मुतशाबहात मुश्त मुश्त यानी जो क्या कहते हैं शुबहात वाले भी जो चीज होती है ना, जिनमें शुबू भी हो जाए हल्का सा भी ना, उसको भी छोड़ देना, ये बारीक तकवा कहलाएगा। और थोड़ा सा इसमें रिलैक्स हो जाए। अब अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह भी कोई मामूली इंसान नहीं थे, कोई वो भी कोई हमारे जैसे सो कॉल्ड मुत्तकी नहीं थे, लेकिन कंपेयर टू हजरत शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारा तकवा कम था, ठीक है। तो हाँ तकवा जो है ना, वो अगर औलाद का भी किसी ना किसी दर्जे का तकवा हो और माँ बाप या वालिद बहुत मुत्तकी थे तो इसको फिर बहुत फायदा होता है, और ये नूरुन अला नूर वाला कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है, कि औलाद भी मुत्तकी बन गई तो ये नूरुन अला नूर है, यानी एक तो वालदैन का नूर और दूसरा औलाद भी नूर, ठीक है। तो शरीयत में इसका भी मुकाम है, ऐसा नहीं है कि नहीं औलाद का कोई ताल्लुक नहीं अपने वालदैन के साथ, और बिल्कुल जो है वो अलग अलग मामला है और कोई फायदा नहीं है माल वालदैन के नेक होने का, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नूरुन अला नूर वाला कॉम्बिनेशन। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि चले बहुत मुत्तकी भी ना बन सकी लेकिन ईमान पे तो रही ना, कम अज कम सारी जिंदगी ईमान के साथ उसने गुजार दी, ठीक है, आमाल ना कर सकी जैसे इनके वालदैन ने किए थे या वालिद साहब ने किए थे, ठीक है। इनके साथ भी अल्लाह ताला जो है आमाल की कमी को अल्लाह ताला कयामत के दिन पूरा कर देंगे, कि जब इनके वालिद साहब को जन्नत में ऊंचा दर्जा मिलेगा क्योंकि उन्होंने खूब आमाल किए थे, तो जाहिर है आमाल के हिसाब से फिर जन्नत के दर्जात मुतय्यन होते हैं ना, और औलाद को चूंकि आमाल कम किए इन्होंने, ठीक है, तो उनको बहुत नीचा कोई दर्जा मिला है, तो भाई वालदेन जो हैं वो फिर खुश तो नहीं होंगे ना अपने औलाद के बगैर जिंदगी गुजार करके, और जन्नत में तो खुशी पक्की है, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो नीचे से औलाद को उठा करके ऊपर के दर्जे में पहुंचा देंगे, जैसे कुरान मजीद के अंदर सूरह तूर की गालबन आयत है, वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शय, के वालदेन के अमल में से कोई कमी नहीं करेंगे कि अच्छा तुम्हें नीचे पहुंचा देते हैं, नहीं उनको नीचे नहीं पहुंचाएंगे, नीचे वालों को ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये तो औलाद की है हमारे दीन के अंदर हैसियत, ठीक है, लेकिन अगर औलाद ईमान यानी एतमाद ही नहीं करती हो वालिदैन की बात के ऊपर, बल्कि उल्टा दुश्मनी पे उतर आए या ईमान से ही चले जाए, तो अब उनका बेटा बेटा होना कोई उनको फायदा नहीं देगा। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का वाकया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रखा, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का वाकया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रख करके हमें समझा दिया कि ऐसा है मामला, ठीक है। तो बनी इसराइल के लिए भी यही नसीहत थी और हमारे लिए भी यही नसीहत है। तो आगे फरमाते हैं कि दूसरे की यानी काबिल की मकबूल ना हुई, क्यों? इसलिए कि जिस मामले के फैसले के लिए ये न्याज चढ़ाई गई थी उसमें हाबील हक पर था, इसलिए उसकी न्याज कबूल हो गई, और काबिल हक पर नहीं था उसकी कबूल नहीं हुई। तो कबूलियत तो हक वाले की होती है, अल्लाह ताला की कबूलियत है ना, कोई दुनिया की सरकार की कबूलियत की थोड़ी है कि आप उसको रिश्वत दे करके या झूठ बोल करके कबूलियत करवा लें, ठीक है, चाहे वो नेक हो चाहे वो बुरा हो, झूठ बोल करके नेकों को भी बेवकूफ बना सकते हैं, ठीक है, नेकों को भी धोखा दिया जा सकता है, क्योंकि नेक जितना ही हो जाए वो आलिमुल गैब नहीं हो जाता, उसको गैब का इल्म नहीं होता। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग मेरे सामने जो है ना वो अपने मसले लेकर के आते हो, तो मैं तुम लोगों की बात सुन करके जो मुझे सही लगती है उसके मुताबिक फैसला दे देता हूं, ठीक है। लेकिन आगे क्या है, वो हदीस की तफसील मुझे समझ आती है, लेकिन अल्लाह ताला को तो सब पता है तुम सच बोल रहे हो कि सच नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो इंसानों के साथ तो ये सब चल जाता है, चाहे वो नेक इंसान भी क्यों ना हो, क्योंकि वो भी आलमुल गैब नहीं होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ कबूलियत तो ऐसे नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे वही मामला हुआ कि भाई ये हक पर नहीं था, उसकी कबूल ना हुई, वरना फिर फैसला ना होता, यानी अल्लाह ताला तो फिर बात को खोलना चाहते थे, तो उस वजह से कबूलियत जाहिर भी कर दी। क्योंकि जमाने में कबूलियत का वो आप सब नहीं सुना होगा कि भाई वो एक कुर्बानी करके जो है ना वो कोई चीज रख दी जाती थी, अब आसमान से बाकायदा आग आती थी, और अगर कबूलियत है जिस चीज की, जिसकी कुर्बानी की कबूलियत है उसको जला देती थी, और जिसकी कबूलियत नहीं होती थी उसको नहीं जलाती थी। तो इस तरह से फैसला हो गया। तो अगर ऐसा ना होता तो फिर फैसला ना हो पाता, बल्कि और खलत व इश्तबाह हो जाता मामला, और खलत मलत हो जाता, मुश्तबह हो जाता। जब वो दूसरा यानी काबिल इसमें भी हारा तो झल्ला कर कहने लगा कि मैं तुझको जरूर कत्ल कर दूं। लेकिन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है उसको नाकामी दर नाकामी, ठीक है, पहले ही जो है वो जो करना चाह रहा था उसके रास्ते में रुकावट आ गई, कि आदम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया कि नहीं ये तो जायज ही नहीं है, तुम कर ही नहीं सकते, तो एक रुकावट आ गई ना, आदम अलैहिस्सलाम ने उसको मना कर दिया, तो ये एक नाकामी हुई। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी नाकामी कि भाई ये कुर्बानी का फैसला हुआ कि अल्लाह ताला से आप चेक करवा लेते हैं, चलो आदम अलैहिस्सलाम ने अप्रूव नहीं किया, तो अब जो है वो हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं, उधर भी नाकामी हो गई इसको। ठीक है, क्योंकि बेवकूफ इंसान था, जाहिर सी बात है कि नबी को बाईपास कर समझ रहा था कि अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे उसको, ये तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला तो नबी को भेजते ही इसलिए कि भाई दुनिया में नबी ने बताना होता है क्या सच है क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं मैं डायरेक्ट अल्लाह ताला से पूछूंगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो उधर ने आपने मुंह की खानी है और क्या करना है। ठीक है, तो यही इसके साथ भी हुआ। तो अब डबल फेलियर रिजल्टेड इन हिज अटर फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो यही हर इंसान के साथ होता है कि जब वो यानी गलत काम कर रहा होता है और फिर उसमें उसको फेलियर्स मिल रहे होते हैं ना, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है। अच्छा, हक पे जो होता है ना वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता, जो वाकई हक पर होता है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता, हमारे जैसा हक पर नहीं। ठीक है, हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना, जब कोई फड्डा करते हैं ना फड्डा, ठीक है, तो उसमें हम जो हक पर होते भी है ना अगर, ठीक है, तो वो हम बहुत जुजई तौर पर हक पर होते हैं, जुजई तौर पर हक पर होते हैं। ठीक है, और ओवरऑल पिक्चर में हम ना हक पर ही होते हैं। ये फर्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम समझ नहीं पा रहे होते हैं अक्सर। ठीक है, हम समझते हैं कि जो एक छोटा सा मामला है ना, तो उसमें हमारी किसी के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो गया तो भाई उसमें मैंने तो गलत काम नहीं किया, गलत तो उसने किया है, तो मैं हक पर हूं वो ना हक पर है, तो अब हम उस छोटे से मामले के अंदर हक पर होने की वजह से हम ये डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि अब जो है ना वो हमारे साथ सारी मदद होनी चाहिए, दुनिया वाले भी हमारी मदद करें, बल्कि दुनिया का परवरदिगार भी हमारी मदद करे, क्योंकि हम हक पर हैं। ठीक है, क्योंकि हम हक पर हैं, तो अब सबके लिए के लिए जरूरी है कि वो हमारी मदद करें, अल्लाह के लिए भी जरूरी है कि वो हमारी मदद करें। ठीक है, लेकिन हकीकत क्या होती है कि उस एक छोटे मामले में तो हम शायद वाकई हक पर हों, लेकिन बाकी मामलात में जो हमने गंद मचाई हुई होती है, राइट, बाकी मामलात में जो हमने झूठ बोला हुआ होता है, और बाकी मामलात में जो हमने धोखे दिए हुए होते हैं, राइट, और बाकी मामलात के अंदर जो हमने दूसरों के ऊपर जुल्म किए हुए होते हैं, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला की मदद तो नहीं आने वाली है ना, अब अल्लाह ताला की मदद तो नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन हम गुमान अपने बारे में ऐसा करते हैं कि मैं चूंकि इस छोटे मामले में हक पर हूं, इसका मतलब यह है कि मैं हर जगह हक पर हूं, हालांकि यह हकीकत नहीं होती है। तो अब हमारी जो है ना, जब हमें मदद नहीं आ रही होती है तो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ना हक पर है ना हम, तो नाहक पे जो होता है वो तो फ्रस्ट्रेट ही होता है फिर उसके बाद। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो एक छोटे से मामले के अंदर नेक बन जाना ये नेकी नहीं होती है, बल्कि नेकी की तारीफ ये होती है कि आप सारे मामलात में नेक हो। ठीक है, जहां जहां आपने गड़बड़ मचाई भी है ना, तो वहां वहां जो है ना वो आप नादिम हो, शर्मिंदा हो, अल्लाह से तौबा करें, हर चीज के ऊपर अल्लाह से तौबा करें। ये पार्शियल पार्शियल तौबा कि एक मामला मैंने अच्छा कर लिया, बाकी मामलात में कोई जरूरत नहीं मुझे तौबा करने की। भाई ये तौबा नहीं होती है, ये तौबा की डेफिनेशन में नहीं आती है चीज। ठीक है, तौबा 100% होती है, 100%। ठीक है, तो अब आप अपने अमाल को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वो और बात है, वो कमजोरी है अल्लाह ताला से, लेकिन माफी तो मांग सकते हैं ना। नदामत तो उसमें कौन सा, आपके पैसे लग रहे हैं नादम होने में। ठीक है, नादिम हो यार, अल्लाह ताला से मदद मांगे। अल्लाह मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ अपने झूठों को, अपने जुल्म को, जो मैं अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ, अपने बच्चे के साथ कर रहा हूँ, या अपने पड़ोसी के साथ कर रहा हूँ, या फलाने शख्स के साथ कर रहा हूँ, मैं जुल्म मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अल्लाह आप मेरी मदद फरमा दीजिए। अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ अपने अपनी इन आदतों की वजह से। अल्लाह आप मुझे माफ कर दीजिए और मेरी मदद भी फरमा दीजिए। मेरी मदद दूसरों के खिलाफ नहीं, मेरी मदद मेरे खिलाफ, मेरी मदद फरमा दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा शर जो है वो मेरा अपना शर है, वो मेरा अपना शर है जो मुझे नेक बनने से रोक रहा है। तो अल्लाह मेरे नफ्स के खिलाफ आप मेरी मदद फरमा दीजिए। ऐसे मांगिए कभी दुआ अल्लाह ताला से। दूसरों के खिलाफ मदद के लिए तो हम दुआएं मांग लेते हैं, चलें वो भी अल्लाह का एहसान है कि हम अल्लाह से दुआ मांग लेते हैं, वरना तो खुद ही हैंडल करने पे आ जाते हैं हम, मारपीट करके, अगले बंदे को नुकसान पहुंचा करके मसला हल करने की कोशिश कर। लेकिन चलो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं कि अल्लाह दूसरों के मामले में मेरी मदद फरमाती है, तो गनीमत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। लेकिन एक होता है अपने खिलाफ अल्लाह से मदद मांगना, अपने नफ्स के शर के खिलाफ अल्लाह से मदद मांगना, ये होती है असल मदद मांगना, क्योंकि इसके अंदर तौबा होती है, ये तौबा होती है। ठीक है, और तौबा के बाद फिर अल्लाह ताला का बंदा महबूब भी बन जाता है, अल्लाह की मदद का भी मुस्तहिक बन जाता है। ठीक है ना जी, तो ये फ्रस्ट्रेट हुआ, झल्ला करके कहने लगा कि मैं तुझको जरूर कत्ल करूंगा। उस एक ने, यानी दूसरे जो हाबील था, उसने जवाब दिया कि तुम्हारा हारना तो तुम्हारी ही नाहक परस्ती की वजह से है। मेरी क्या, मेरा क्या कसूर है भाई इसके अंदर, जो तुम मेरे ऊपर चढ़े चले जा रहे हो, मेरा क्या कसूर है इसके अंदर, तुम्हारी गलती है। क्योंकि खुदा ताला मुत्तकियों ही का अमल कबूल करते हैं, ठीक है, गुनाहगार का अमल कबूल नहीं करते, मुत्तकी का अमल कबूल करते हैं। ठीक है, मुत्तकी की मिनिमम दर्जा क्या है, तौबा करने वाला, मिनिमम दर्जा तौबा करने वाला। ठीक है, यानी गुनाहों को छोड़ देने वाला, ये तो उसके ऊपर वाला दर्जा होगा ना, लेकिन बेयर मिनिमम लेवल इज जो कि अपने गुनाह कर भी रहा है लेकिन अल्लाह ताला से मदद और माफी ये सब कुछ मांग रहा है ना साथ साथ, तो मिनिमम दर्जा है मुत्तकियों का, इससे इससे कम कोई दर्जा नहीं है मुत्तकी का। तो अल्लाह ताला तो मुत्तकियों ही का, ये हमारे लिए ये जो बात ये आज कह रहा है और क्यों कह रहा है, उसकी वजह यही है कि हम मायूस ना हो जाए अपने आप से और अल्लाह ताला की रहमत से। ठीक है, मायूस ना हो जाए। तौबा ये यानी ये उम्मीद का दरवाजा खोलता है। ठीक है, तौबा की कबूलियत ये उम्मीद का दरवाजा है। बेशक मैं नेक नहीं बन पा रहा, बेशक मैं जो वो गुनाह नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन नादिम और शर्मिंदा होकर तौबा कर रहा हूं, अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली। ठीक है, अगर किसी को कोई कह दिया जाए कि नहीं तेरी तौबा नहीं कबूल होगी, तौबा है ही नहीं, अब सोचें, जैसे कि वो एक फिरका है, पहले भी था, अब भी वो मौजूद है, लोगों ने बताया कि आज भी वो दुनिया के अंदर दूसरे नाम के साथ होते हैं, खवारिज, खवारिज का फिरका था ना, वो अब्बासी खिलाफत के जमाने में वो पैदा हुआ था, खवारिज का फिरका, बल्कि खवारिज का तो खैर पहले पहले पैदा हुआ था वो, ये मुतजिला का, सॉरी मुतजिला, उनका क्या था भाई, गुनाह कबीरा किया, काफिर हो गया, बस खत्म। ठीक है, अब तो तुम काफिर हो गए गुनाह कबीरा करने के बाद, अब ये बेवकूफी के शैतान ने उन लोगों को लगा दिया था इसके ऊपर, क्या नहीं बस अब काफिर हो गया। ठीक है, तो अब जो वो बंदा काफिर हो गया, या उसने समझ लिया कि मैं काफिर हो गया, अब तो वो कहे भाई अब तो मेरे किसी काम का फायदा ही कोई नहीं, अब तो मैं काफिर हो चुका हूं।
अब क्या नेकी करने का, नमाज पढ़ने का क्या फायदा, अब तो मैं काफिर हो चुका हूं। नहीं, अहले सुन्ना वल जमात का ये नहीं है। तो लोगों ने बताया कि आज भी मिडिल ईस्ट के अंदर एक मुल्क है, वहां पर वो इस तरह के लोग आज भी मौजूद हैं जिनके यहाँ वही अकीदा चल रहा है, ठीक है। और फिर उसका उनका इफेक्ट क्या होता है उनके ऊपर, कि बस वो एक मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं मुस्तकिल, ठीक है। और फिर जाहिर है फिर गुनाह का दरवाजा खुल जाता है उनके लिए। तो तौबा जो है ना, ये अहम तरीन चीज है इंसान के लिए, इसका जिक्र भी कभी हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। करना तो दूर की, करना छोड़ना तो दूर की बात है, इसका जिक्र करना भी हम कभी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो अल्लाह तो मुत्तकियों ही का अमल कबूल करते हैं। तो मैंने तो तकवा इख्तियार किया और खुदा के हुक्म पर रहा, खुदा तआला ने मेरी नियाज कबूल कर ली, तूने तकवा छोड़ दिया और खुदा के हुक्म से मुंह मोड़ा, तेरी नियाज कबूल नहीं की। सो इसमें तुम्हारी खता है या मेरी खता है, इंसाफ कर, इंसाफ से बात करो, यानी यूज योर लॉजिक, यूज योर कॉमन सेंस, ठीक है। मेरा कसूर है, तुम्हारा कसूर है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा यही इरादा है तो तू जान, मैंने तो पुख्ता कसद कर लिया है, यानी तुम जानो तुम्हारा अमल जाने, मैंने तो पुख्ता कसद कर लिया है कि अगर तू मुझ पर मेरे कत्ल करने के लिए 10 दराजी करेगा भी, यानी अपने हाथ को मेरी तरफ एक्सटेंड करेगा भी मुझे कत्ल करने के लिए, तब भी मैं तुझ पर तेरे कत्ल करने के लिए हरगिज 10 दराजी करने वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं तो खुदाए परवरदिगारे आलम से डरता हूं कि बावजूद ये कि तेरे जवाज़े कत्ल का बजाहिर एक सबब मौजूद है कि भाई जब तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे कत्ल की नीयत से, जो कि तुमने खुद ही कह दिया कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे, तो एक जवाज तो मेरे पास बनता है कि मैं सेल्फ डिफेंस के अंदर तुम्हें कत्ल कर दूं, है ना भाई। सेल्फ डिफेंस तो एक ह्यूमन वर्च्यू है कि भाई अपनी जान बचाने के लिए आप अगले बंदे को अगर कत्ल करना पड़े तो उसकी गुंजाइश निकलती है, ठीक है। तो फरमाया कि एक सबब मौजूद है, यानी ये कि तू मुझको कत्ल करना चाहता है, मगर इस वजह से कि ये जवाज अब तक किसी नुस्खे जुज़ी से मुझको मुहक्कक नहीं हुआ, ठीक है। माशाल्लाह हाबील साहब भी जो है वो मुत्तकी भी खाली नहीं थे बल्कि फकीह भी थे, यानी फकीह हजरात जो है वो जिस किस्म की, खैर वैसे भी हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने ये तफसीरन ये अल्फाज लिखे हैं, लेकिन उनके अपने अल्फाज भी जो है ना वो ऐसे ही थे कि मैं तो खुदा से डरता हूँ। अब उसकी तफसीर हजरत ने इस तरह कही लिखी है कि तो सेल्फ डिफेंस में कत्ल करना अगरचे के मेरे लिए जवाज की गुंजाइश बनती है, लेकिन कोई शरी दलील जो है ना वो मेरे ऊपर अभी तक नहीं आई है। यानी ये कि तुमने बस जुबान से ही कहा है ना, तुमने अभी कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि मैं तुम्हें कत्ल कर सकूं, ठीक है। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह भी तो बहुत बड़े फकीह थे ना, तो उन्होंने जो है ना फिर वो फिक्र की जुबान के अंदर इनकी नीयत और इनके इरादे को जो है वो हमारे लिए नकल कर दिया ताकि हमारे लिए समझना और आसान हो। तो फरमाया कि ये जवाज अब तक किसी नुस्खे जुज़ी से, यानी किसी कुरान और हदीस, यानी कोई अल्लाह के बाकायदा किताब मेरे ऊपर नहीं उतरी, कोई अल्लाह का हुक्म नहीं उतरा कि भाई को कत्ल कर दो, ठीक है। तो इस वजह से मेरे पास कोई दलील नहीं है, तो इसलिए इसके इर्तिकाब को मैं एहतियात के खिलाफ समझता हूं, ठीक है। क्योंकि वो तो यानी जमीन में अगर देखा जाए तो शायद वो पहले मुत्तकी उम्मती, आदम अलैहिस्सलाम तो नबी थे ना, नबी तो मासूम होता है, ठीक, बेशक मुत्तकी भी होता है लेकिन वो मासूम। ये जो दोनों थे ये तो उम्मती थे नबी के, ठीक है। तो तकवा इन्होंने इख्तियार करना था, पहला बंदा जो इख्तियार करेगा तो वह ना इब्तिदा करता है, तो अब नीचे सब जो नेकी करते हैं ना तो वो गोया के उसके फॉलोअर्स होते हैं उस नेकी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला नेकी करने वाला वो इतनी बड़ी नेकी करे कि जिसकी इत्तबा में फिर बाकी सारे लोग नेकी, जी सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क, इस वक्त लोड भी ज्यादा होता है शायद। तो हम क्या पढ़ रहे थे, एक मिनट। हाँ, तो ये जो है ना, वो बेसिकली इन अदर वर्ड्स हम अपनी इंग्लिश जुबान में अगर उसको डिस्क्राइब करें तो हाबील वॉज सेटिंग ए प्रेसिडेंस, इसको ठीक है, या काबिले तकलीद इस मिसाल कायम कर रहे थे जिसकी बाकी सारी इंसानियत ने तकलीद करनी थी। ठीक है, तो अब तकवा की मिसाल कायम कर रहे थे, तो इनका तकवा ऐसा हो कि जिसकी सारी इंसानियत तकलीद कर रही हो। तो वो तकवा था कि भाई जब तक मेरे ऊपर कोई हुक्म शरी नाजिल ना हो जाए तो मैं तो नहीं कतल करूंगा तुम्हें। ठीक है ना, अपने गुमान या अपनी अकल में बेशक मैं जस्टिफाई कर सकता हूं अपने इस अमल को कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं, ठीक है ना, लेकिन वो अकली फैसला होगा, मुझे तो नकली फैसला चाहिए। नकली फैसला क्या होता है, जो कि नस से साबित होता। ठीक है, कि भाई अल्लाह का हुक्म आए कि तुम काबिल को कत्ल कर दो, ये नकली फैसला होगा, यानी अल्लाह के हुक्म से मुझ तक पहुंचे, नकल होके मुझ तक पहुंचे। ठीक है, ऐसा तो कोई हुक्म आया नहीं है मेरे ऊपर, तो इस वजह से ना अपनी अकल से इज्तिहाद करना, ये भी इज्तिहाद ही होता, ये कोई गुनाह का काम नहीं होता, इज्तिहाद होता उनका, लेकिन इज्तिहाद तो अकल से किया जाता है ना। ठीक है, तो मैं उसको एहतियात के खिलाफ समझता हूं। ठीक है, तो ये कमाल तरीन दर्जे का तकवा था जो कि आबील ने अपनी जान पर खेल करके इख्तियार किया, है ना भाई। इनके पास तो कोई हथियार भी नहीं थे, इनके पास तो कुछ नहीं था अपने आप को बचाने का, बचाने के लिए, तो गोया कि ये मतलब ही न्यू ही वॉज गोइंग टू बी किल्ड, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मैं नहीं अपना हाथ उठाऊंगा तुम्हारे। ठीक है, तो ये फरमाया कि इस शुबों की वजह से मैं खुदा से डरता हूं, और ये हिम्मत तुझी को है कि बावजूद है कि मेरे जवाज कत्ल का कोई अमर मुक्तजा मुक्तजी नहीं है, कोई अमर तकाजा नहीं कर रहा कि तुम मुझे कत्ल कर दो, क्या जरूरत है भाई, तुम मुझे भाई तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, सारी चीज तुम्हारे सामने क्लियर हो चुकी है, अब खत्म करो यार इस मामले को, लेकिन फिर भी तुम जो है वो मेरे कत्ल के दरपे हुए हुए हो, बल्कि माने मौजूद है, रोकने वाली चीज मौजूद है, लेकिन फिर भी तुम खुदा से नहीं डरते, मैं यूं चाहता हूं कि मुझसे कोई गुनाह का काम ना हो, तू मुझ पर कितना ही जुल्म क्यों ना करे, जिससे कि तू मेरे गुनाह और अपने सब अपने सर रख ले। ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छा जवाब भी दिया था कि ये जो बात कर रहे थे आबील आबील से कि मैं तो चाहता हूं कि मेरा गुनाह और तुम्हारा गुनाह सब तुम्हारे सर पे आ जाए, फिर तू दोजखियों में शामिल हो जाए और यही सजा होती है जुल्म करने वालों की, तो ये कोई यानी उसके साथ बदख्वाही नहीं कर रहे थे कि मैं तो चाहता हूं कि तुम जो है वो जहन्नुम में चले जाओ, नहीं, बदख्वाही नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको डरा रहे थे कि शायद ये बात मान जाए, डरा करके। ठीक है, वरना इनको इनको भी फ्यूचर का इल्म नहीं था, इनको ये नहीं पता था कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो इनका तो शायद यही हो कि शायद ये डर जाए मेरी बात सुनकर के और अपने इस गुनाह से रुक जाए। ठीक है, तो इन्होंने अपनी कोशिश करी उसको समझाने की, अब सीधे मुंह नहीं समझ रहा था तो टेढ़े मुंह समझाना पड़ता है ना भाई। ठीक है ना, कोई बात सीधे मुंह नहीं मान रहा हो तो उसको टेढ़े मुंह समझाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन ना। ठीक है ना भाई, सिचुएशन को देखे ना, इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन ऐसी है कि नहीं मानेगा तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो भाई अब डांट के समझाना पड़ेगा। क्या ख्याल है, आपके औलाद जिससे आपको मोहब्बत हो, वो अगर आपके प्यार मोहब्बत से बात नहीं मान रही हो तो क्या आप कहेंगे नहीं यार प्यार मोहब्बत ही अच्छी चीज होती है, डांटना वाटना तो बस मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। ठीक है ना, तो अब आप उसको छोड़ देंगे गलत काम करने की, जिससे कि उसका नुकसान आपको पता है कि वो उसने बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लेना है। नहीं, अगर आपको मोहब्बत है, अगर आपको उसकी खैर ख्वाही मकसूद है, तो यू विल रिजोर्ट टू डांट, यू विल रिजोर्ट टू इट, वरना आपकी मोहब्बत मोहब्बत नहीं है असल में, ये खैरख्वाही नहीं है आपकी, कि अगर वो सीधे तरीके से बात नहीं माना तो आप उसको डांट डपट के बात ना समझा रहे हो, हत्ता कि मारपीट की भी जरूरत पड़ेगी आप उसको फिर भी रोकेंगे। ठीक है, लेकिन दीन के मामले में हम कहते हैं बस जी आप प्यार प्यारी मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करते, या प्यार मोहब्बत ही करना चाहिए बस, राइट। हम कहते हैं उसको जी आप लड्डू खिलाने की हमसे डिमांड करते रहे और हम आपको लड्डू खिलाते रहे, ठीक है ना। मेरे सामने तो हम हजरत जी को तो प्यार मोहब्बत के दिन आपने देखे ना, बहुत सारे आप हैं जिन्होंने हजरत जी को हजरत जी के आखिरी दौर में देखा है, ठीक है। तो आपने तो हजरत जी के डांटे सुनी नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से समझते हैं कि जी हजरत जी तो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, आप क्यों नहीं करते। आपने कभी उनकी डांट सुनी है, कभी देखे हैं उनको डांटते हुए? आपने देखे ही नहीं है वो तो। आप तो किताबें पढ़ दें उनकी, ठीक है। तो कहाँ निशान भी लगा के रखा हुआ था क्या फरमाया हजरत ने, रहे सलामत तुम्हारी नस्बत, जो कई दफा आप लोगों को या जिस नसीहत कर चुका है कि पढ़े इस वाली किताब को अच्छे तरीके से। तो फरमाया कि पेज नंबर 253 कहते हैं, आज के दौर में अगर कोई ऐसा शेख मिल जाए जो रोक टोक और नसीहत करने वाला हो तो उसकी सोहबत को गनीमत समझना चाहिए, उसका हल्का मजबूती से थाम लेना चाहिए। याद रखें, सर पर हाथ फेरने वाले हजारों मिलते हैं मगर कहने सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। रोक टोक करने वाले, नसीहत करने वाले, ठीक है, ये नहीं मिलते। हाथ फेर करके आपसे हदिया कबूल करने वाले और मिठाइयां खाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, या ये कि भाई चलो कम से कम जो है ना वो इधर ही रहे, तो ऐसा नहीं होता ना। तो बहरहाल खैरख्वाही के खिलाफ है, तो इस वजह से आबीन ने जो है वो ऐसी बात कर दी कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी मेरा गुनाह भी अपने सर रख करके अपने दोज़खियों में शामिल हो जाओ। और यही सजा होती है। देखिए अब उसके बाद उसूल भी बयान कर रहे हैं कि भाई असल में तुम्हें जो मैं डरा रहा हूं ना, मैं उसूल की वजह से डरा रहा हूं क्योंकि मैंने अपने बाप से यही सीखा है, ठीक है। उनके बाप कौन थे, उनके शेख कौन थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो मैंने आदम अलैहिस्सलाम से यही सीखा है कि जुल्म करने वालों की यही सजा होती है, ठीक है। तो सो यूं तो पहले ही से कत्ल का इरादा कर चुका था, ये जो सुना की मुदाफियत भी ना करेगा, चाहिए तो था कि गदाख्ता हो जाता मगर बेफिक्र होकर और भी उसके जी ने उसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया। तो अब जिसने बात नहीं माननी होती है ना, तो उसको ना तो प्यार मोहब्बत समझ में आता है ना डांट डपट समझ में आती है, उसने तो बर्बादी होना होता है। तो इस वजह से उसने आगे वही काम करना होता है, ये अल्लाह और उसका मामला होता है। हमारा काम है बशीर और नजीर, नबी अलैहिस्सलाम की इन बातों को अपनाना और बशारत का काम भी करना और नजीर नजारत का काम भी करना। हिदायत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है, वो किसी के हवाले की ही नहीं। तो यही मामला काबिल के साथ भी हुआ, तो लॉजिकली तो उसको बात मान लेनी चाहिए थी मगर बेफिक्र होकर और भी ज्यादा आगे बढ़ करके भाई के कदर पर आमादा कर दिया। उसके जीने ने उसके नफ्स ने उसको बहका करके फिर आखिर उसको कत्ल ही कर डाला, जिससे कमबख्त बड़े उस नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। दुनिया में तो ये नुकसान के अपना कुव्वत बाजू और राहत रूह गुम कर बैठा, ठीक है। भाई तो पीठ को मजबूत करने वाला, सपोर्ट करने वाला भाई अल्लाह ताला ने बनाया था। कयामत के दिन जो है वो सबसे पहले यौमा यफिर्रुल मरु मिन अखी, सबसे पहले भाई भाई से भागेगा। क्यों? इसलिए कि सबसे पहले जो मुसीबत में पड़ेगा ना जहन्नुम में जाने वाला, वो अपने भाई की तरफ लपकेगा कि भाई तुम दुनिया में मेरी मदद किया करते थे, मेरे भाई थे, आखिरत में भी तुम मेरी मदद करो ना अभी। लेकिन वो आखिरत में ये मामला होगा कि भाग जाएगा भाई उससे, ठीक है। तो इसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, तो जो अपना कुव्वत बाजू और राहत रूह इसको ही इसने अपना नुकसान कर लिया सबसे पहले, और आखिरत में ये नुकसान के सख्त अजाब में मुब्तला होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है और जुल्म करता है ना, वो सिर्फ आखिरत का नुकसान नहीं करता, वो दुनिया में भी अपना नुकसान करता है। अब जब कत्ल से फारिग हुआ तो अब हैरान है कि लाश को क्या करूं जिससे ये राज पोशीदा रहे, कुछ समझ में नहीं आया उसके। तो फिर बिलाखिर अल्लाह ताला ने एक कौवा वहां भेजा, अल्लाह ताला भी माशाल्लाह कौवे से उसी काम लेते हैं। वो हमने मौलाना मक्की हिजाजी दामत खातून का जो सीरत नबी पढ़ रहे सुन रहे थे, तो उसमें हजरत ने यही फरमाया ना कि वो जमजम का कुआं जब गायब हो गया तो बड़े लंबे अरसे तक जमजम जो है वो छुपा रहा, तो फिर हजरत ख्वाजा अबू अब्दुल मुतलिब नबी अलैहिस्सलाम के दादा दादा जो थे, उनको ये हुआ कि भी जमजम तलाश किया जाए। तो उनको अल्लाह ताला ने ख्वाब में जो है ना वो फिर कौवा ही दिखलाया, और फिर कौवा ही उनको नजर भी आया कि वो वहां पे बैठा जो है ना वो कर रहा था, तो यहाँ पे जमजम फिर उनको मिला। ठीक है, तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने कौवा इस्तेमाल किया, वहां भी अल्लाह ताला ने कौवा इस्तेमाल किया कि अल्लाह ताला ने कौवा वहां भेजा कि वो चोंच और पंजों से जमीन को खोदता था, और खोद कर एक दूसरे कौवे को कि वो मरा हुआ था, यानी दूसरा मरा हुआ कौवा था, तो उस गड्ढे में ढकेल कर उस पर मिट्टी डालता था, ताकि वो कौवा इस काबिल को तालीम कर दे कि अपने भाई अब हाबील की लाश को किस तरीके से छुपाए। काबिल ये वाकया देखकर अपने जी में बड़ा जलील हुआ कि मुझको कौवे के बराबर भी फहम नहीं, यानी अकल इतनी भी नहीं, और गायत हसरत से कहने लगा कि अफसोस मेरी हालत पर, क्या मैं इस कौवे से भी गया गुजरा, यानी इससे क्या नहीं कौवे से भी गया गुजरा कि इस कौवे के बराबर होता और अपने भाई की लाश को छुपा देता। यानी इसको कत्ल करने पर कोई अफसोस नहीं हुआ, अगर अफसोस और नदामत हो जाती तो तौबा हो जाती उसकी, लेकिन इसने नहीं अफसोस किया, इसने तो कौवे से कम अकल होने के ऊपर अफसोस किया। ठीक है, सो इस बदहाली पर बड़ा शर्मिंदा हुआ इसी वाकये की वजह से, जिससे कतले नाहक के मफासिद साबित होते हैं। हमने तमाम मुकल्लफीन पर उमूमन और बनी इसराइल पर खसूसन यह हुक्म लिख दिया, यानी मुकर्रर कर दिया इस बात को कि कत्ले नाहक इतना बड़ा गुनाह है कि जो शख्स किसी शख्स को बिला मुआवजा दूसरे शख्स के हैं, जैसे वो पेट किलर्स होते हैं तो उन्होंने बगैर पेमेंट लिए हुए किसी को जाके कत्ल कर दिया, नहीं यहाँ बिला मुआवजा का यह मतलब नहीं, बल्कि बिला मुआवजा का मतलब क्या है कि किसी यानी कत्ल करने वाले को किसी मकतूल की जान के बदले में कत्ल करने के बगैर। ठीक है, किसी शख्स को बिला मुआवजा दूसरे शख्स के जो नाहक मकतूल हुआ हो, या बिदून किसी शर व फसाद के जो जमीन में इससे फैला हो, ख्वा मख्वा कत्ल कर डाले। ठीक है, यानी जमीन में फसाद, जैसे डाकू, डाकू जमीन में फसाद फैलाता है, लोगों को रास्ते में रोक करके उनकी जो है वो माल छीनता है, लूटता है, या कत्ल भी कर देता है, तो वो जमीन में फसाद फैलाना, तो अब डाकू को कत्ल करना ये शरीयत के अंदर वाजिब हो गया। ठीक है, तो किसी शख्स ने डाका भी नहीं डाला था, किसी शख्स ने किसी को कत्ल भी नहीं किया था, और उसने उसको जाके कत्ल कर दिया, तो अगर ऐसा किया तो गोया उसने तमाम आदमियों को कत्ल कर डाला। ठीक है, तो उसको बाज़ एतबार से ऐसा गुनाह हुआ गोया उसने तमाम आदमियों को कत्ल कर डाला। ठीक है, अब ये जो बाज़ एतबार है इसकी तफसीर हजरत ने ब्रैकेट्स में लिखी है, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास का वक्त मुकम्मल हो चुका। तो किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट बताना हो तो वो भी लिख सकते हैं अभी। ठीक है, माशाल्लाह सब समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छी बात है, बात की समझ हम सबको भी, और अमन की तौफीक भी इखलास के साथ अता फरमाए। अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम।